अब अगला टॉपिक बड़ा खूबसूरत है। हमारे जहन में शुक्र के साथ हमेशा क्या आता है? नेमते हैं, लेकिन नेमतों के ना होने पर भी क्या शुक्र होता है? सवाल समझें, क्या नेमतों के कम होने पर भी शुक्र होता है? तो समझ लीजिए एक बात, फिर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वो क्या है कि ज़्यादा नेमते हैं ना तो शुक्र है, कम नेमतों पे शुक्र करने का नाम सब्र है। आप सी सॉ पे कभी बैठे होंगे बचपन में, एक तरफ बोझ ज़्यादा होता है तो दूसरी तरफ ऊपर चला जाता है, फिर वो ऊपर है तो नीचे है। जो साबिर होगा वो शाकिर भी होगा, जो शुक्र करेगा ना वो सब्र भी करेगा, और सब्र किए बगैर शुक्र हो ही नहीं सकता, और शुक्र किए बगैर सब्र आ ही नहीं सकता। इन सारे जुमलों को घर जाके सोचिएगा तो आपको इसमें से बहुत कुछ मिलेगा। तो हम तकाबुल पढ़ेंगे, शुक्रगुजार अमीर और सब्र करने वाला गरीब, पेज 90, कि इन दोनों का क्या फ़र्क है। सब्र और शुक्र दो ऐसी अजीम इबादतें हैं कि इनसे हर इंसान का ताल्लुक़ होता है। इनके बारे में बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि इनकी मुख्तलिफ इकसाम है। इनमें से अफसल इबादत कौन सी है, सब्र या शुक्र? क्वेश्चन समझ आया? सब्र बड़ी चीज़ है कि शुक्र? तो उसका जवाब देखिएगा, इमाम शम्सुद्दीन बिन कय्यम ने बेहतरीन बात कही कि सब्र और शुक्र का इंसान के साथ बराह रास्त ताल्लुक है। बेशक वो इंसान अमीर हो या गरीब, ऐशो आराम वाला हो या आजमाइशों वाला, तो सवाल ये पैदा होता है कि अमीर शाकिर और फ़कीर साबिर में से कौन अफसल है। फिर फरमाया, तहकीक से ये साबित होता है कि इन दोनों में से अफसल वो है जिसके अंदर तकवा ज़्यादा हो। अगर तकवा में दोनों बराबर हों तो फजीलत में भी दोनों बराबर होंगे। अल्लाह ने किसी गनी को फ़कीर पर या किसी सेहतमंद को बीमार पर फजीलत नहीं दी। फजीलत का मेयार तो तकवा और परहेजकारी है। सूरह हुजरात आयत 13-13, इन अकरमकुम इंदल्लाह यत्काकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा तकवे वाला है। और तकवा की असास यानी बुनियाद तो सब्र और शुक्र दोनों पर कायम है। ये सिफत तो दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो बेहतरीन सब्र और शुक्र करने वाला हो वही अफजल है। इस तकवा के बगैर किसी एक को दूसरे पर फौकियत देना बहरहाल मुनासिब नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अमीर शख्स शुक्र के हवाले से अल्लाह का ज़्यादा तकवा रखता हो बनिस्बत इस शख्स के जो फ़कीर साबिर हो, लेकिन अल्लाह का तकवा इसमें कम हो। और यह भी हो सकता है कि तकवा की वजह से फ़कीर साबिर गनी शाकिर पर फौकियत हासिल करे। ये कहना ठीक नहीं है कि यह आदमी फ़कीरी की वजह से अफजल है, और ना ही ये कि फ़लाँ शख्स नेमतों पर शुक्र की वजह से अफजल है। दोनों तरफ से फजीलत साबित नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों ही ईमान से मुंसलिक हैं, बल्कि ईमान इनमें लिपटा हुआ है। और हकीकत यह है कि जो शख्स वाजिबात और नवाफिल का ज़्यादा पाबंद होगा वही अफजल होगा, चाहे वो शुक्रगुजार अमीर हो या सब्र करने वाला गरीब हो। जैसे एक रिवायत में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाता है, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है इसके ज़रिए मेरा बंदा मेरे करीब होता है, यानी जिस चीज़ को मैंने अपने ऊपर फ़र्ज़ किया और नवाफिल के ज़रिए मेरा बंदा मेरे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि मैं इसको महबूब बना लेता हूँ। पीछे भी यह हदीस गुजरी थी, हमने देखा था इसको। बस जो आदमी फ़राइज़ और नवाफिल का ज़्यादा पाबंद होगा वही अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला होगा। और अगर कहा जाए जैसा कि हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी कौम के फ़कीरों और अमीरों से आधा दिन, यानी जो फ़कीर हैं फ़ुकरा हैं अमीरों से आधा दिन कबल जन्नत में दाखिल होंगे और आधा दिन 500 साल का होगा, क्योंकि कुरान पाक में आता ना क़्यामत का दिन 1000 साल के बराबर है, तो आधा दिन पहले यानी 500 साल पहले जाएंगे। और ये कैसे मुमकिन है? बड़ा आसान है इसका जवाब। एयरपोर्ट पे एक वो मुसाफिर है कि जिसके हाथ में सिर्फ हैंड कैरी है, और दूसरा वो है जिसके पास 5 बड़े बड़े लगेज हैं। तुलवाने, रखने, टैग लगवाने, उनका हिसाब किताब करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, या जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो दुनिया में कोई भी नेमत लें तो एक दफ़ा ज़रूर सोचें कि सुम्मा लतुसलुन्ना यौम इज़िन अनि नईम, नेमतों के बारे में तुमसे सवाल होगा। कहा गया कि ये बात फ़ुकरा के अफजल होने के लिए दलील नहीं है, और ना ही इस तरह इनकी कदर व मंजलत में इजाफा होता है, क्योंकि हो सकता है कि अमीर आदमी और आदिल बादशाह हिसाब किताब की वजह से बाद में जन्नत पहुँचे, लेकिन जब दाखिल हो जाएँ तो इनका दर्जा और मरतबा फ़कीर से अफजल हो। जैसे ये है कि जाए जहाज़ में बाद में, लेकिन फ़र्स्ट क्लास का टिकट हो। तो फिर कह नहीं सकते आपके अमीर कोई कम दर्जे की जन्नत में जाएंगे और गरीब, बस हिसाब किताब है। और एक जुमला लिख लें तो उससे बहुत बात समझ आएगी कि हिसाब और चीज़ है और अजाब और चीज़ है। हिसाब सबका होना है, अजाब ज़रूरी नहीं है। ये ऐसी कि इम्तिहान सारे बच्चे देते हैं, फेल तो सारे नहीं होते। तो अल्लाह ने आपके मेरे लिए डरावे की ये बात रख दी कि तुम हिसाब से डरो और दुआ कीजिए कि अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। सारी बहस से क्या बात पता चली कि अमीरी और गरीबी दोनों ही अफजल है। क्योंकि देखिए एक जुमला समझ लें, असूल है, जिस चीज़ पे आपका मेरा इख्तियार नहीं उस पे मेरी आपकी खुशबख्ती या बदबख्ती का मेयार नहीं। कितनों को जुमला समझ आया? देखिए ना, कोई अमीर है तो क्या ये उसका फ़ैसला है, कोई गरीब है तो ये उसका फ़ैसला है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अमीर को ज़्यादा आला दर्जे मिले तो गरीब को कम मिले? क्या इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम? अब आप और मैं कितने मुत्तकी हैं ये हमारे इख्तियार में है। तो बहुत सारे अमीर ज़्यादा मुत्तकी होते हैं बहुत सारे गरीबों से, और बहुत सारे गरीब ज़्यादा मुत्तकी होते हैं बहुत सारे अमीरों से। अमीरी गरीबी से जन्नत या जहन्नुम का कोई ताल्लुक नहीं। उस्मान गनी क्या अमीर थे कि गरीब? अब्दुर्रहमान बिन औफ अमीर थे कि गरीब? अबू बकर सिद्दीक अमीर थे कि नहीं? इसके बरक्स अब देखिए हबाब बिन अरत, अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, क्या ये अमीर थे कि गरीब? ये गरीब थे। तो बहुत सारे अमीर भी जाएंगे, बहुत सारे गरीब जाएंगे। तो इस गलत फहमी में कोई ना रहे कि अब हम गरीब हैं तो वहाँ भी जन्नत मिल जाएगी, और अमीर कहें कि अब यहाँ अमीर हो गए तो वहाँ जाके गरीब ही होंगे। असल बात यह कि नेमतों का इस्तेमाल कैसा करता है बंदा। फिर शर्त क्या है कि इनका ईमान और तकवा से कितना ताल्लुक़ है, यानी जिसका ताल्लुक़ ईमान और तकवा से ज़्यादा होगा वही अफसल होगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में रिवायत है, अगर सब्र और शुक्र दोनों सवारियाँ होती तो मैं बता नहीं सकता कि सवारी के लिए किसको इख्तियार करूँ। बस हकीकत है कि सब्र और शुक्र दोनों लाजम मलजूम है, दोनों का अपना अपना नाम है। कोई भी सिफत इन दोनों सिफतों में से किसी शख्स के अंदर गालिब हो सकती है और दूसरी सिफत से ज़्यादा महसूस की जा सकती है। सुम्मा लतुस्सलुन्ना यौमइज़िन अन्निन्नईम, सूरह तकासुर आयत 8 है। फिर ज़रूर उस रोज़ तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। इस आयत मुबारक में बताया गया कि नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से फजूल नहीं की जाती हैं, बल्कि इनको शुमार करने वाला सबसे बुलंद व बरतर है। जिस शख्स पर अल्लाह ताला की बेपाया दुनियावी और दीनी नेमतें हों तो अल्लाह तबारक ताला इन नेमतों के बारे में पूछेगा कि क्या इसने इनकी हिफाजत की या ज़ाया कर दिया। हज़रत मखूल से मज़कूरा आयत के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, इन नेमतों से मुराद ठंडा पानी, सायादार जगह, सैर होकर खाना, बेहतरीन जिस्मानी आज़ा और मज़े की नींद है। हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि सब दुनियावी मज़े इन नेमतों में शामिल हैं। इब्ने अब्बास इस आयत के बारे में फरमाते हैं, नईम से मुराद जिस्म, कान और आँखों का सही और सेहतमंद होना है। सलफ़ सालेहीन की इस तफसीर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही नेमतें, बल्कि नेमतें आम हैं, हर नेमत से यही मुराद है। और जिन नेमतों का जिक्र हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो और मुजाहिद और मखूल ने किया वो तो दीगर तमाम नेमतों का जुज़ हैं। उन्होंने छोटी नेमतों का जिक्र करके बड़ी नेमतों की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है और कम को जिक्र करके ज़्यादा की तरफ तवज्जो दिलाई है। तो आप देख सकते हैं कि अब इस सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको मुझे क्या समझ आ रहा है कि अपने मौजूदा हाल पे राज़ी रहिए। अमीर हैं तो कोसे ना, अल्लाह ने अमीर क्यों बना दिया, मेरे लिए इतनी आजमाइशें हैं, इतने फितने हैं, देखो ना फलां गरीब है उनको तो कोई बहुत बड़ी आजमाइश नहीं। आप अपने पैसे को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, आप खैर के रास्तों में लगाइए, अपना हिसाब खुद ही लेते रहे इससे पहले कि आपका हिसाब हो। दूसरी बात, आप गरीब हैं, आपके नेबर में बहुत अमीर है, या आप गरीब हैं, आपकी बहन के पास बहुत है, अगर ऐसा है तो क्या करें, जले और कुड़ें? क्या के शुक्र है मेरे पास लाइबिलिटी कम है। आप देखिए ना, जिसके पास कम चीज़ें हैं वो जल्दी फारिग होगा, उसको हिसाब कम देना पड़ेगा, उसके घर बिजली का बिल कम आएगा। तो आप कहें कि अल्लाह ने मुझे कम इसलिए दिए ताकि मैं वक्त को दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करूं। तो बस अपने मौजूदा हाल पे राज़ी रहने का नाम दीन है। और आज जो तकाबुल का दौर चल पड़ा है, जो हमारे कल्चर में एक भेंट चाल चल पड़ी है, अमीर भी खुश नहीं है क्योंकि वो अपने से ज़्यादा अमीर को देख रहा है, गरीब की खुशी की तो क्या बात करनी। ठीक है, इस हदीस का मुतालिया करने के बाद अपने हाल और इन लोगों के हाल का मुवाजना करते हैं जिनके बारे में यह हदीस है, ताकि हम इन नेमतों को पहचान सकें जो हमारे ऊपर की गई हैं। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, एक दिन या रात को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि सैयदना अबू बकर और उमर भी बाहर ही खड़े हैं। आपने पूछा, इस वक्त आप दोनों को घर से किस चीज़ ने निकाला? दोनों ने अर्ज़ किया, भूख ने ऐ अल्लाह के रसूल। आपने फरमाई, ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मुझे भी इसी चीज़ ने घर से निकाला है जिसने आप दोनों को निकाला, आओ चले। तो वह दोनों आपके साथ चल दिए। यहाँ तक एक अंसारी सहाबी के घर पहुँचे तो वो घर पर नहीं थे, लेकिन इनकी बीवी ने इन्हें देखा तो अर्ज़ किया, अहलन व सहलन, खुश आमदेद। आपने फरमाया, फलां कहाँ है? औरत ने जवाब दिया, कुएं से पानी लेने गए हैं। फौरन ही वह अंसारी पहुँच गए। जब इस अंसारी सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों साथियों को देखा तो पुकार उठा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज के दिन मेरे मेहमानों से ज़्यादा बाइज़्ज़त मेहमान किसी के यहाँ नहीं है। रावी कहते हैं कि फिर जल्दी से गए और बहुत सी कच्ची पक्की और ताज़ा खजूरें ले आए और कहा कि इनको तनावुल फरमाइए, यानी खाइए, और ख़ुद छुरी ली। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो दूध वाला जानवर न ज़िबा करना। बस उन्होंने जानवर ज़िबा किया। इसमें से मेहमानों ने खाया और खजूरें भी खाईं। और जब बिल्कुल खा पी के सैर हो गए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, रोज़े क़यामत तुमसे आज के दिन की इस नेमत के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हें तुम्हारे घरों से भूख ने निकाला, फिर तुम यह नेमत हासिल करके ही लौट रहे हो। अल्लाह अकबर, इनसे सिर्फ़ एक दिन के खाने का पूछा जाएगा जो कभी कभार मिला करता था। हज़रत आयशा फरमाती हैं, वो ऐसा भी होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था और आप अपने पेट पर भूख की वजह से 2 पत्थर बांधा करते थे। हम नेमतों में डूबे हुए लोगों से कौन सा सवाल किया जाएगा? ये मुल्क सबसे ज़्यादा गरीब मुल्क था, यहाँ तक कि हमारे आबा अजदाद चमड़े खा लिया करते थे और इर्द गिर्द के ममालिक की तरफ तलाश माश के लिए जाया करते थे और अपने अहलो याल से साल हर साल दूर रहा करते थे ताकि इनके लिए कुछ ला सकें। बाज़ औक़ात तो बेचारों को वापसी पर लूट लिया जाता था। फिर फैज़ान बारी ताला ने हमें ढांप लिया, हमारे छोटे छोटे कबीलों और इलाकों ने एक बड़े मुल्क की सूरत अख्तियार की और लोगों के दरमियान भी उल्फत और मोहब्बत पैदा हुई तो हमारे ऊपर नेमतों की बारिश शुरू हो गई। ज़मीन ने हमारे लिए अपनी तमाम तर बरकतें निकाल डालीं, यहाँ तक कि बाहर से लोग यहाँ तलब रिस्क के लिए आना शुरू हो गए और फ़ायदा उठाने लगे। आज हम में से कौन ऐसा है जो भूख की वजह से घर से निकल खड़ा हो? बल्कि है कोई जिसके दस्तरखान पर एक रोज़ भी ऐसा गुजरे कि गोश्त मौजूद ना हो? बल्कि अब तो हमारे बचे हुए खानों से बिल्लियाँ पल रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, इन बिल्लियों से सड़कें भर गई हैं। अब भी हम शुक्र अदा ना करें, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें शुक्र करने वालों में शामिल कर दे। आपको तो ये बातें किस मुल्क के लिए कही जा रही हैं? ये पाकिस्तान की नहीं बात, ये अरबी बुक है, आले सऊद में से किसी शख्स ने ये बुक लिखी है। आज सऊदी अरब की दौलत का हाल देखिए, अल्लाह ने उनको कितनी दौलत दी। और एक वक्त था कि सऊदी अरब बड़ा गरीब मुल्क था, और आपको पता कब दौलत मिली? जब इस्लामी शरीयत नाफिज हुई। आप आज यहाँ बैठकर इस बात की पेशनगोई कर सकते हैं, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आज हम पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम कायम करते हैं, लेकिन इस्लामी निज़ाम करने से पहले लोगों की जहनसाजी करनी होती है, तरबियत करनी है, तस्किया करना है, पहले इंसान तैयार किए जाते हैं फिर सिस्टम बनते हैं। बस आज अगर इस बात पे हम तैयार हो जाएं तो अगले 5-10 साल में पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होगा, क्योंकि जब अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें बढ़ती हैं ना तो फिर उसका शुक्र भी खुद ब खुद बढ़ने लगता है। तो क्या पता चला हमें इस बात से, खुलासा क्या था कि सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला बराबर है। हदीस में आता है, खुलासा है उसका, कि रोज़ा रख के सब्र करने वाला पेट भर के खाकर शुक्र करने वाले के बराबर है। अब देखिए, कोई रोज़ा रखे तो हमें उस पर कितना रहम आता है और बहुत बड़ी नेकी है। सच्ची बात है, मुश्किल इबादत में से एक इबादत रोज़ा है। अब जब रोज़ा रख के सारा दिन भूख प्यास से बचकर कोई शाम को खाना खाता है और इसके बरक्स उसी टाइम के बीच में कोई 2 दफ़ा खूब अच्छा साफ़ सुथरा नफीस खाना खाता है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो दोनों बराबर हो गए। अब आप कहेंगे फिर तो इसका अंदर रोज़े रखने ही नहीं चाहिए। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जब रोज़ा रखें तो सब्र करें, और जब खाएं तो शुक्र करें। हदीस में आता है ना कि रोज़ेदार के लिए दो नेमतें हैं, एक ये कि जब वो रोज़ा खोलता है उसकी रगें तर होती हैं, उसके जिस्म में ताकत जाती है, उसको खुशी होती है, ज़हब ज़माई वब तल्ला तिल रूह की बस सब तल अजरी इंशाअल्लाह। और दूसरा अजर कब मिलेगा? जब आखरत में अल्लाह सुबहान तआला का दीदार होगा। वजूह यौम अज़ नादिरा इला रब्बी का नाजिरा। तो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है कि जब बंदे को अल्लाह का दीदार होगा। तो आज की इस नशिस्त का आखिरी टॉपिक करते हैं नेमतों की इकसाम, पेज 97 है। नेमतों के बारे में बहुत बात हो गई, लंबी हो सकती है क्योंकि नेमतों का इहाता बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आम तौर पर नेमतों को तीन किस्मों में बांटा जाता है। अहम टॉपिक है, तवज्जो कीजिएगा, अपने ऊपर लें मेरे पास कौन सी नेमतें हैं। तीन किस्म की, नंबर एक आम नेमतें कॉमन ब्लेसिंग्स, जुज़वी नेमतें यानी जो कि हर वक्त नहीं होती, पार्ट ऑफ पार्शल नेमतें कह लीजिए, पार्शल ब्लेसिंग्स, और तीसरी ख़ास नेमतें, खासुल ख़ास यानी अहम नेमतें। आइए तीनों का फ़र्क देखते हैं। आम नेमतें, ये ऐसी नेमतें जो हर किस्म की मखलूक को मिलती हैं, जो भी ज़मीन में है वो नेक हो या फासिक, मोमिन हो या काफिर, इंसान हो या जिन, बल्कि पूरी कायनात को मिलती हैं। सूरत नूह आयत 20-21 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु जाल लकुमुल अर्दा बिसाता लितसलुकु मिन्हा सुबुलन फुजाजा, और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन को फर्श बना दिया ताकि इसकी कुशादा राहों में चलो। और फरमाया, अलम नजलिल अर्दा मिहादा वल्जिबाल औतादा वखलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलनल लैल लिबासा वजअलनन नहार माशा वबनैना फौककुम सबन शिदादा वजअलना सिराजं वहाजा वअन्ज़लना मिनल मौसिराति मान सज्जाजा लिनुख्रिज बिही हब्बं वनबाता वजन्नातिन अल्फाफा। सूरत नबा आयत 6-16, 10 आयतें हैं। और देखिएगा कितनी नेमतें, उंगली से गिनिएगा, क्या हमने ज़मीन को फर्श नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखें नहीं बनाया, और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया और तुम्हारी नींद को आराम का सबब बनाया, और रात को हमने पर्दा बनाया, दिन को हमने वक्त रोज़गार बनाया, और तुम्हारे ऊपर हमने 7 मजबूत आसमान बनाए, और एक चमकता हुआ रोशन सूरज यानी चिराग पैदा किया, और बदलियों से बकसरत बहता हुआ पानी बरसाया ताकि इससे अनाज सब्ज़ा और घने बाग उगाएं। कितनी ही तरतीब और तंजीम से अल्लाह की नेमतें हो रही हैं। आप देखिए 10 आयतों में 12 नेमतों का तज़किरा है। फिर सूरत कसस आयत 71 में फरमाया, कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिदियाइन अफला तस्मऊन। सोचिएगा ज़रा, क्या हमने कभी इसको नेमत समझा? क्या कह दीजिए, देखो तो सही, अगर अल्लाह तुम पर रात ही रात क़्यामत तक बराबर कर दे तो सिवाय अल्लाह के कौन माबूद है जो तुम्हारे लिए रोशनी लाए, क्या तुम सुनते नहीं हो? क्या पता चला? आप देखिए कि एक ख़ास मुद्दत तक हम सो सकते हैं, उसके बाद उठने को दिल करता है ना, और एक ख़ास हद तक हम जाग सकते हैं, उसके बाद सोने को दिल करता है, अगर रात ही हो और रात ही रहे। इस मुल्क में तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 सीजन्स हैं, आप गर्मी भी इंजॉय करते हैं, सर्दी भी, बहार भी, खिजां भी, लेकिन आज भी दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ सिर्फ रात है, बहुत मामूली सी रोशनी है, साल में 2 महीने सूरज निकलेगा, बाकी महीने बिल्कुल नहीं। और कुछ ऐसी भी जगह हैं कि जहाँ गर्मी इतनी है, दिन इतने लंबे हैं, जैसे अगर आप सिंगापुर और इधर से मलेशिया और उसके इर्द गिर्द जाएँ तो सर्दी आती नहीं है, वहाँ की सर्दी ऐसी है जैसे आपकी गर्मी जाने वाला वक्त होता है। तो अल्लाह ने ये जो निज़ाम अपने हाथ में रखा है, ये कितनी बड़ी एक नेमत है। अगर अंधेरी रात ही छाई रहे तो आँखों की रोशनी का क्या फ़ायदा, और दिल ही कितने तंग हो जाएं, रोशनी की नेमत से तो लोग महरूम हो जाएं, बल्कि रंगों की तमीज़ भी मुमकिन ना रहे, इस बसारत की नेमत से कैसे फ़ायदा उठाया जा सके। इस आयत से अगली आयत सूरत कसस 72 में फिर इसको अपोजिट भी कहा है, क्या, कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुम अन्नहार सरमदन इला यौमिल क़ियामा यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिललैल बिललैलिन तस्कुनूना फीह अफला तुबसिरून। कह दीजिए, क्या तुम देखते नहीं, अगर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए क़्यामत तक दिन ही दिन बना दे तो कौन माबूद है सिवाय अल्लाह के जो तुम्हारे लिए रात बनाए जिसमें तुम सुकून हासिल करते हो, तो क्या तुम देखते नहीं, अगर ज़मीन में हमेशा रोशनी यानी दिन ही की कैफियत रहे तो दुनिया को सुकून ना आए, लोग सुकून से ना रहें बल्कि पागल हो जाएं और असाब जवाब दे जाएं, दुनिया के पीछे भागते ही चले जाएं और ज़मीन अपनी तमाम तर वसत के बावजूद तंग हो जाए, लेकिन अल्लाह का फजल बड़ा वसी है, वो बड़ा ही रहमतों वाला है। बस हमारे लिए ज़रूरी है कि नेमतों पर इसका शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने सूरत कसस आयत 73 में फरमाया, वमिन रहमतिही जअललकुमुल लैल वन्नहार वन्नहार अली तस्कुनू फीही वली तब्तगू मिन फ़ज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून। और इसने तो तुम्हारे लिए अपने फजलो करम से दिन रात मुकरर किए ताकि तुम रात को आराम करो और दिन में इसकी भेजी हुई रोज़ी तलाश करो, ये इसलिए कि तुम शुक्र अदा करो। सूरज और इसका ख़ास मकदार में ज़मीन से दूर होना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर इस मकदार से ज़रा भी करीब हो जाए तो खेतियाँ जल जाएँ और समंदर का पानी बुखारात बनकर उड़ जाए, मखलूक ख़त्म हो जाए। और अगर इस ख़ास मकदार से दूर हो जाए तो हर चीज़ हद से ज़्यादा ठंडी हो जाए, दूध थनों ही में जम जाए, खून रगों में ही ठिठर जाए और शदीद कोहर से यानी सर्दी की जो लहर आती है फसलें तबाह हो जाएं, तो यही कहना काफ़ी है। पाक है वो हिकमतों करम वाला, वो एहसान करने वाला, वो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला मेहरबान। पहाड़ों का इस ख़ास अंदाज से गाड़ देना कि ज़मीन का तवाज़न बरकरार रहे, ये भी अल्लाह की अमूमी नेमतों में से है। चाँद और इसकी रोशनी और समंदर में पानी का मद्दो जज़र, पानी के इस अंदाज से हरकत करना कैसे लगता है कि समंदर के अंदर भी दरिया और नहरें बहती हैं, ये सब अल्लाह की अमूमी नेमतें हैं, है कि नहीं। पूरी दुनिया का सर्कल चल रहा है, आप देखिए साइंस भी इसको मानती है, दुनिया का कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा भी इस चीज़ को मान रहा होता है, उसको पता होता है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की रहमत है, उसी के साथ है। समंदर के पानी का ख़ास मकदार में बुखारात बनना, फिर बादल में तब्दील होना, फिर उसके बाद ख़ास ख़ास मुकामात पर बरसना और इन बादलों का मिलना, इनके पानी से मुर्दा ज़मीन का जिंदा होना, फिर सख्त चट्टानों के अंदर इस पानी का ठहर जाना जिससे फ़ायदा उठाया जाता है, इंतहाई मज़ेदार मीठे पानियों के चश्मे उबल पड़ना जिनसे लोग प्यास बुझाते हैं, और इस पानी का मुल्क दर मुल्क सफ़र करके वापस आते हैं, वापस समंदर में चले जाना और लोगों का फ़ायदा उठाना, ये सब अल्लाह की अमूमी नेमतें ही तो हैं। इंसानों और जानवरों के खाने की किस्म किस्म की चीज़ों का ज़मीन से निकलना जो मौसम गर्मा और सरमा के लिए अलग अलग निकलती हैं, और ऐसी फसलें जो ज़मीन पानी और फ़िज़ा की मुनासबत से पैदा होती हैं, अमूमी नेमतों में से दरख्त और पहाड़ हैं जिनको अल्लाह ने नोए इन ज़मीन की खसूसियत के मुताबिक पैदा किया। जैसे सहरा के दरख्त और इनके मेवे कितने ही मीठे होते हैं, फिर सहराई जड़ी बूटियां जिनमें अल्लाह ने ख़ास तासीर रखी है, समंदर और इसके अंदर मौजूद ख़जाने और इन समंदरों से कितना बेहतरीन गोश्त निकलता है जिनमें से हीरे मोती और जवाहरात निकलते हैं, ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो दवाई के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। समंदरों के नमक में अल्लाह ने शिफा डाल दी, और फिर इन मौजों को तो देखिए कैसे मद्दो जज़र लिए हुए उठती बैठती रहती हैं, गोया कि अल्लाह ताला की हमदो सना कर रही हों, और ये मौजें हर वो चीज़ समंदर से बाहर निकाल फेंकती हैं जो गंदी हो या इंसान के फ़ायदे के लिए ना हो। अगर समंदर की मौजें खामोश हो जाएं तो हर मुर्दा मछली समंदर में ताफुन पैदा कर दे, यानी उसमें बदबू आ जाए, गंदगी पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर, ये भी कितनी बड़ी नेमत है, आप देखिए समंदरों के पास से बंदा गुजर भी नहीं सकता। ठीक, अगर समंदर की मौजें खामोश हो जाएं तो हर मुर्दा मछली समंदर में ताफुन फैलाए और हर नुकसानदेह चीज़ बाकी रह जाए। अल्लाह ने इन मौजों को बहरी जहाज़ उठाने के लिए मुसख़र कर दिया जो तेज़ धार मौजों को चीरते हुए चले आते हैं, लोगों और सामान को उठाकर इतने दूर दूर तक ले जाते हैं जहाँ इंसान खुद ले जाता तो बड़ी मुशक्क़त उठानी पड़ती। कुछ अशार हैं, आफाक में अल्लाह की बेशुमार निशानियाँ हैं, शायद कि थोड़ी सी भी इनमें से तुझे इसकी तरफ हिदायत दे दें, और कितनी ही समंदर में इसके अजीब व गरीब निशानियाँ हैं। ज़रा तुम्हारी आँखें गौर तो करें, फिर ज़रा कम से कम अपने इर्द गिर्द के माहौल पर तो गौर कीजिए, और फिर रियायत पढ़िए सूरत अंबिया 22, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के अलावा कोई और भी इलाह होते तो ये दोनों दरहम बरहम हो जाते। सो पाक है वो अल्लाह जिसने इस हर चीज़ को पैदा किया और ठीक किया और तकदीर बनाई और सीधा रास्ता दिखाया, और वो हर चीज़ पर कादिर है। मेरा ख़्याल है कि इस मज़मून से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि कितनी चीज़ें नेमत हैं जिनको हम नेमत समझते भी नहीं हैं, जिनके बारे में हमारा गुमान क्या होता है ठीक है, ये तो आनी थी, अब ये कोई बड़ी बात है। और आपने नोट किया होगा कि ये नेमतें मोमिन को भी मिल रही हैं, काफिर को भी, फाजिर को भी, गोरे को भी, काले को। और ये अल्लाह का दुनिया में रहमान होना, दुनिया में अल्लाह ताला की रहमत की जो विसफ़ है ना, उसकी वजह से ये सारी नेमतें। ये लिख लें आप अपने पास जुमला कि जो अमूमी नेमतें हैं ना, ये अल्लाह के रहमान होने की दलील है। और आखरत में मोमिनों को जो ख़ास नेमतें मिलनी हैं, वो अल्लाह के रहीम होने से इंशाल्लाह मिलेंगी।